پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی لے کر یاسمین جمیل حاضر ہے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر سلمان تاروالی, اور فیس بک پر ہمارے پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہیں ہماری ڈیجیٹل ٹیم کی وردہ خلیل. یہ پروگرام اس وقت براہ راست نشر ہو رہا ہے ریڈیو پر پاکستان اور بھارت کے لیے میڈیم ویو 972 پر, اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر, اور ہمارے فیس بک پیجز پر جن کے لنکس ہیں facebook.com/voa urdu, facebook.com/hardamrawahainzindagi, اور facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. تو لیجئے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج کے مہمانوں کے تعارف کے ساتھ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہمارے آج کے مہمان ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے زیر اہتمام کینیڈی لوگر یوتھ ایکسچینج اینڈ اسٹڈی پروگرام کے تحت یہاں امریکی ہائی اسکولوں میں ایک تعلیمی سال گزارنے کا موقع حاصل کرنے والے 105 طلباء و طالبات کے ایک گروپ کے کچھ نمائندہ طالب علم. ہمارے مہمان ہیں کوہاٹ پاکستان سے تعلق رکھنے والے یوسف رضا قریشی, جو وسکانسن کے ایک ہائی اسکول میں ایک تعلیمی سال مکمل کر رہے ہیں. لاہور پاکستان کے سائرم خان, جنہیں میشیگن کے ایک ہائی اسکول میں ایک تعلیمی سال گزارنے کا موقع ملا ہے. ہماری مہمان ہیں کراچی پاکستان سے تعلق رکھنے والی کیلیفورنیا کے ایک ہائی اسکول میں ایک سال کے لیے زیر تعلیم کشف مجیب. اسلام آباد کی درے نایاب, جو اوہایو کے ایک ہائی اسکول میں ایک تعلیمی سال مکمل کر رہی ہیں. ہمارے مہمان ہیں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے آفاق علی, جو ویسٹرن نیو یارک کے ایک ہائی اسکول میں ایک سال کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور پشاور پاکستان کے معید الحسن بھی آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں, جو میشیگن کے ایک ہائی اسکول میں ایک سال کے لیے زیر تعلیم ہیں. ہمارے مہمانوں کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے سنگ سنگ سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/voaurdu اور facebook.com/hardamrawahainzindagi اور facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. ہمارے سبھی مہمان موجود ہیں امریکہ کی مختلف ریاستوں سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. جی, یوتھ ایکسچینج پروگرام کے اس نئے تعلیمی سال کے لیے پاکستان کے منتخب 105 ذہین اور باصلاحیت طالب علموں کے کچھ نمائندہ طالب علم ہمارے ساتھ ہیں, اور آج ان میں ایک ایسا طالب علم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جس کا کہنا ہے کہ اسے یہاں تک لانے کا راستہ بنا ہمارا پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, جسے سن کر اسے اس یوتھ ایکسچینج پروگرام کا پتہ چلا اور اس میں فراہم کی گئی معلومات کی مدد سے اس نے امریکہ آنے کا راستہ تلاش کیا, اور اس ایکسچینج پروگرام کے سبھی ٹیسٹ اور سبھی مراحل کامیابی سے طے کر کے میشیگن کے ایک ہائی اسکول میں ایک سال تک تعلیم حاصل کرنے کا موقع حاصل کیا. تو پروگرام کا آغاز کریں گے اس ذہین اور باصلاحیت طالب علم معید الحسن سے, جس کی کامیابی کی کہانی دراصل ہر دم رواں ہے زندگی کی کامیابی کی کہانی ہے, جو گزشتہ 4 سال سے پاکستانی نوجوانوں کے لیے اور سبھی پاکستانیوں کے لیے اور دنیا بھر میں اپنے سننے والوں کی دلچسپی اور انہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے مفید طریقے فراہم کر رہا ہے اپنے پروگرام کے مہمانوں کے ذریعے. تو السلام علیکم معید الحسن. معید الحسن ہمارے ساتھ موجود ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام, کیا حال ہیں؟
ٹھیک ہے جی, آپ کیسے؟
और मैं तो ठीक हूँ। और हमने अभी आपके बारे में बताया, तो कुछ बताइए हमारे सुनने वालों को कि हरदम रवायें जिंदगी कैसे आपको यहाँ लाने का जरिया बना और ये प्रोग्राम आपने कहाँ सुना, रेडियो पर या इंटरनेट पर?
जी, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और हुआ ये था कि मेरे डैड को, जो अबू है मेरे, उनको रेडियो ज़्यादा पसंद था टीवी के मुकाबले, क्योंकि कहते हैं कि इसमें इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। तो रेडियो के थ्रू हम ये सुन रहे थे प्रोग्राम तकरीबन लाइक 4 साल से। एंड इस प्रोग्राम का मुझे उसमें पता चला, तो मैंने फिर अपने स्कूल में पूछताछ की वगैरह, टीचर से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे स्कूल में भी ये प्रोग्राम की सिलेक्शन होती है। तो वहाँ से मैंने टेस्ट दिया, जब टेस्ट क्लियर किया फिर इंटरव्यू दिया, वो क्लियर किया, तो एक एक चीज़ क्लियर होती है कि चूँकि मैंने प्रोग्राम काफ़ी टाइम से सुना था, तो जो जो बच्चों ने एक्सपीरियंस किया था या जो हमारे सीनियर्स थे इस प्रोग्राम में पिछले बैचेस के, उनसे जो जो सवाल आप लोगों ने पूछे, तो उसके थ्रू मुझे काफ़ी नॉलेज थी। तो इस तरह मैंने सब बहुत आसानी से ये सारे स्टेप्स हल करके हम यहाँ
पहुंच गए। और फिर ये बताइए कि यहाँ आते ही आपके लिए कैसे कामयाबियों के रास्ते खुलते चले गए, आपकी होस्ट फैमिली ने किस तरह आपका भरपूर खैर मकदम किया और कैसे तालीमी मैदान में आपने कामयाबियाँ हासिल की और आपको पूरे स्कूल में सुपर जीनियस तालिब इल्म कहकर पुकारा जाने लगा, क्योंकि आपने 100% बल्कि कभी कभी 100% से भी ज्यादा नंबर हासिल किए।
जी वेलकम। तो मेरा, मैं कहूँगा कि मेरे एक्सचेंज ईयर का बेस्ट मोमेंट जो था वो मेरा वेलकम ही था, क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट पे मिले तो लाइक ऐसा लगा कि जैसे अपनी फैमिली से मुलाकात हो रही है, मतलब इतनी खुशी होस्ट पेरेंट्स के चेहरों पर। फिर जब घर आए तो जैसे घर के अंदर दाखिल हुए तो सारे लोग मौजूद थे, हमारी होस्ट सिस्टर थी, होस्ट ग्रैंडमा, सब मौजूद थे वेलकम के लिए, तो बहुत वार्म वेलकम हुआ। और सब ने ये कहा कि बस आप एक दिन आपने गुजार लिए तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, तो अभी कोई स्ट्रेंज फील होने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह फिर हाई स्कूल में जब मैं गया तो लाइक जो रेगुलर सब्जेक्ट्स थे जो काउंसलर ने मुझे वो किए, वो तो मैंने ले लिए, लेकिन लाइक जब वो एग्ज़ाम्स या टेस्ट वगैरह मैंने दिए तो वो लाइक आई वाज ओवर क्वालिफाइड फॉर द सब्जेक्ट, सो काउंसलर के कहने पर उन्होंने मुझे फिर AP क्लासेस दिलवाई, क्योंकि वो कह रही थी कि आप रेगुलर क्लास के लिए बहुत स्मार्ट हैं।
अच्छा
जी। तो और इस तरह फिर काफी सारे क्लब्स भी ज्वाइन किए, हाईलाइट्स मेरी रोबोटिक्स क्लब थी जो मेरा बचपन से।
बिल्कुल। और आपने बताया था कि आपने वो काम सीखे जो पहले कभी नहीं किए थे, गिटार सीखा, बेसबॉल टीम में शामिल हुए, स्काउटिंग में शामिल हुए, नेशनल यूथ लीडरशिप समिट 2016 में शामिल हुए और एक डिज़ाइन बनाया जो सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ। तो कुछ मुख्तसरन दोहराइए इन चीज़ों को कि क्या क्या ये कामयाबियाँ थी।
जी, ये हमारे डाइवर्सिटी क्लब के थ्रू था, न्यू डिट्रॉइट यूथ लीडरशिप स्कॉलरशिप एक कॉन्फ्रेंस थी जो जिसमें वो यूथ को इनवाइट करते हैं ताकि एक नया डिट्रॉइट, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया सिटी जो लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल हो, ज़्यादा हेल्पफुल हो, उसके लिए वहाँ पे मैं गया कॉन्फ्रेंस पे, तो काफ़ी डाइवर्सिटी वहाँ पे लोगों की, वहाँ पे मैंने लाइक सिटी का प्लान पेश किया डिट्रॉइट के लिए और वो काफ़ी मकबूल हुआ, क्योंकि जो जो फैसिलिटीज़ मैंने प्रोवाइड करना चाहता था वो सबको काफ़ी पसंद आई। इस तरह फिर स्काउटिंग की तरफ मेरा काफ़ी ध्यान था तो वो भी ज्वाइन किया, एक स्काउट बनने का वो था, और रोबोटिक्स थी, और बस जो जो सामने नज़र आया वो किया।
अच्छा, और आपको एक परफेक्ट स्टूडेंट का एजाज भी हासिल हुआ।
जी, हमारे स्कूल में ये था कि मतलब अगर आप 3 सेमेस्टर का, 1 साल है उसकी, 3 सेमेस्टर है, तो पर सेमेस्टर अगर आप एकेडमिकली पंक्चुअली और बिहेवियर वाइज अगर आप परफेक्ट रहते हैं तो आपको एक परफेक्ट ट्रेमेस्टर का टिकट मिलता है, तो वो टिकट भी मुझे मिला, चूँकि एकेडमिकली तो मैं परफेक्ट था, बिहेवियर वाइज सब ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स दिए, तो लाइक टीचर्स हैरान थे, लाइक उन अपने बच्चों को कह रहे थे कि लाइक ये बच्चा पाकिस्तान से आके लाइक 2-3 मंथ्स में इसने अवार्ड ले लिया। आप लोग ट्राई कर रहे हैं।
अच्छा, और फिर आपने वो एक एंटी बुलिंग डे को भी होस्ट किया था, वो क्या था जो जिसमें आपने होस्ट भी कर लिया?
جی وہ ہمارے جو مڈل اسکول ہے وہاں پہ بلینگ کی کافی کمپلینز آتی ہیں, تو ہمارے ہائی اسکول میں ہماری ایک اینٹی بلینگ سوشل ٹیم ہے جو بلینگ کے اگینسٹ کام کرتی ہے. تو میرے جو رول تھا ڈائیورسٹی کلب میں, انہوں نے جب دیکھا, لائک میں نے جب پریزنٹیشن دی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت اچھا پریزنٹر اور مینٹور بن سکتا ہے پوٹینشیل, تو اس کی تھرو میں اس کے لیے شارٹ لسٹ ہوا ٹیم. پھر ہم نے فل ڈے ایونٹ کیا مڈل اسکول میں, وہاں پہ بچوں کو بتایا کہ بلینگ سے کیسے بچا جا سکتا ہے, یہ کتنا لائک خطرناک اور برا اثر کرتا ہے وکٹمس پہ جس پہ بلینگ کی جاتی ہے. تو اس طرح مینٹور کرنے کا موقع بھی ملا, کافی اچھا لگا.
اور پھر آپ نے امریکی کلچر سے بھی خوب واقفیت حاصل کر لی, اور اپنی بڑی سی ہوسٹ فیملی کے لیے آپ اجنبی نہیں رہے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ آپ ان کے ہمیشہ بیٹے ہی رہیں گے. ہاں
جی جی بالکل, وہ کہہ رہے ہیں کہ لائک ان کی فیملی پکچرز جتنی بھی ہیں, فیملی ٹریز جو ہیں, ان سب میں انہوں نے میری پکچرز وغیرہ لگا لی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہوسٹ پیرنٹس نہ کہا کریں, صرف موم ڈیڈ کہا کریں.
اچھا تو اور ان کو خوش کرنے کے لیے آپ نے بہت سے وہ جو ترکیبیں بھی تو آزمائی ہیں, کھانا بھی پکایا آپ نے ان کے لیے. اور یہ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ پہلی بار آپ نے یہاں پر کھانا پکایا اپنا پاکستانی, اور اتنا اچھا پکایا اور دوسروں کو کھلایا کہ آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ آپ نے پکایا اتنا اچھا.
پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ امی ہے, امی سب کچھ کر لیتی ہیں, تو کسی چیز کی پرابلم نہیں تھی. یہاں پہ آیا جب کلچرل ڈائیورسٹی نہیں تھی تو فوڈ بہت ایک امپورٹنٹ پارٹ تھا اس کا. سو جب میں نے کھانے کچن میں گیا, میں نے ریسیپیز کھولی آن لائن دیکھنے کے لیے, تو اتنی کوئی مشکل ریسیپیز تھی, لائک امی نے پاکستان میں کھلائی تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا مشکل ہوتا ہے بنانا. خیر اس پہ بھی کچھ ریسیپی سلیکٹ کی, پھر جب وہ بنائی اور فیملی نے کھائی, اتنا پازیٹیو رسپانس آیا تو لائک مجھے خود پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھ میں ایک شیف کی کوالٹی بھی ہے.
اچھا تو اور آپ نے بتائیے نا کہ گوگل پر ریسرچ کر کے سب کچھ سیکھا تھا, اور نرگسی کباب تک کیا, نرگسی کوفتے بنائے تھے آپ نے.
جی کوفتے اور کباب بنائے تھے گوگل کی تھرو, اور لائک انگریڈینٹس کے لیے پھر گوگل ٹرانسلیٹ یوز کرنا پڑا تھا, کیونکہ وہ پھر والمارٹ جا کے انٹرنیشنل مارکیٹ سے پھر وہ اسپائسیز وغیرہ جو لانی تھی. تو
آپ کو ان کے نام تک نہیں پتا تھے.
جی تو اس طرح پھر ہر طرح سے ہیلپ لے کے ریسیپی بنائی پھر.
اچھا اور پھر شیف بھی بن گئے, اور پھر آپ ایک ٹیچر بھی بن گئے, اور آپ نے اردو زبان کے لفظ سکھائے بچوں کو, اور ان کو اپنا کلچر بھی سکھایا. تو وہ بتائیے کہ کس طرح بچوں کو آپ نے کیا کیا کچھ سکھایا, اور کیسے اردو کے لفظ ان کو سکھا دیے.
جی وہ میں ایسا تھا کہ لائک آئی ڈبلیو کے دوران جو ہماری انٹرنیشنل ایجوکیشن ویک تھی, اس کے دوران لائک میں اردو میں نام وغیرہ لکھتا, تو وہ بچے کافی حیران تھے کہ ایک تو آپ لائک انگلش لکھ نہیں رہے, دوسرا آپ الگ ڈائریکشن سے شروع کر رہے ہو, پھر آپ عجیب و غریب قسم کی کنیکشن بنا رہے ہو ورڈس کے بیچ میں. تو وہ ان کو بہت فیسینیشن تھی کہ لائک یہ ہمیں بھی سیکھنا ہے. تو کافی بچوں نے اپنے نام لکھوائے اور لائک ہاتھ پہ اور کاپی نوٹ بکس پہ, اور کافی بچوں کو الفابیٹ بھی سکھانے کا موقع ملا, تو کافی اچھا فیل ہوا کہ میرے تھرو بھی کسی نے اردو سیکھ لی.
اچھا جبکہ آپ کی اپنی اردو بھی ماشاء اللہ, ہاں پشاور کے ہیں آپ. ہاں اچھا تو پشاور کے ایک پشتو زبان بولنے والے ایک طالب علم نے نہ صرف یہ کہ اردو میں خود بھی مہارت حاصل کر لی ہے, اور کہ اردو کو انہوں نے یہاں امریکہ میں بچوں کو بھی اردو سکھانے کی کوشش کی ہے, اور ابھی تو بھی ان کا قیام اور بھی زیادہ دیر تک بھی ہے, تو پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ کریں گے. اور آپ کی بھائی کامیابی کی کہانیاں تو اگر ہم سنتے رہے تو باقی مہمانوں کی کہانیاں رہ جائیں گی. تو کچھ دیر کے لیے آپ سے اجازت کرتے لیتے ہیں, اور ہم اب شامل کریں گے اپنے پروگرام میں آج کے پروگرام کی اگلی مہمان درے نایاب. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون پر موجود ہیں. چترال سے ان کا تعلق ہے لیکن آپ اسلام آباد میں رہتی اور پڑھتی تھیں تو یہاں آنے سے پہلے. تو السلام علیکم درے نایاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاں تو درے نایاب آپ بتائیے کہ یوتھ ایکسچینج پروگرام میں آپ جیسے گھرانے کا پس منظر رکھنے والی ایک لڑکی کس طرح امریکہ پہنچی, اور کس طرح وہ ایک اجنبی دیس میں, ایک اجنبی گھرانے میں, ایک اجنبی سماجی اور ثقافتی ماحول میں اپنے لیے کامیابی کے راستے ڈھونڈ رہی ہے.
جی میں نے جب یہ پروگرام کا اسٹارٹ میں نے اس طرح سے کیا کہ جب اسٹوڈنٹ اسٹارٹ کیا تو اس کی زندگیاں پوری ٹرانسفارم ہو جاتی ہیں. دے فائنڈ این پرپز فار دیئر لائف, وہ امبیسڈرز بن جاتے ہیں اور دنیا میں چینج لانا چاہتے ہیں. سو آئی واز ریلی انسپائرڈ اور میں نے بھی ٹرائی کیا اور دیکھ کے میں نے یہ
دور نایاب ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹیلی فون کی لائن کچھ صحیح نہیں ہے, تو آپ اپنا ٹیلی فون بند کیجئے, ہم آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ سائرم خان موجود ہیں, لاہور سے ان کا تعلق ہے اور ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, تو آپ سے ہم بات بعد میں کریں گے, پہلے سائرم خان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سائرم خان.
وعلیکم السلام میم, کیا حال ہے آپ کے؟
بالکل ٹھیک ہیں, اور لاہور پاکستان سے تعلق آپ کا, مشیگن سے آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر ہیں, تو آپ بتائیے کہ آپ بھی امریکہ میں اپنی ذہانت و صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ کر رہے ہیں جس طرح کے معید الحسن کر رہے ہیں, انہوں نے بتایا, اور آپ کے تجربات معید الحسن سے کس طرح مختلف ہیں اور کس طرح ان جیسے ہیں؟
جی بالکل میم, پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے شو پہ بلایا ہمیں اور بڑا آنر کی بات ہے. اور جس طرح کے ابھی موہت بتا رہے تھے کہ جو سبجیکٹس کی بات ہے کہ ادھر ہم لوگ جو سبجیکٹس تقریباً نائنتھ یا ٹینتھ گریڈ میں پڑھتے تھے نا, وہ میں یہاں پہ ٹویلتھ گریڈ میں پڑھ رہا ہوں, یعنی ایز اے سینئر. تو جو بچے ہیں یہاں پہ وہ جنرلی اتنے نہیں ہیں جتنے ہمارے پاکستان میں ٹرینڈ ہوتے ہیں نا پڑھائی کے معاملے میں. تو ادھر آ کے مجھے جو میرے کاؤنسلرز اور پرنسپل ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ادھر کی کلاسز کے لیے اوور کوالیفائڈ ہو, تو جو بھی کلاسز لیتے ہیں ان میں ماشاء اللہ 100% ہی آتے ہیں, تقریباً زیادہ آ جاتے ہیں ان سے. اور جی اور باقی جو معاملے ہیں, یعنی میرے یوتھ گروپس ہیں اور ڈیکا میرا ایک گروپ ہے انٹرپرینورشپ کا, یہ اس میں یوتھ لیڈرز اور جو بزنس مین ہوتے ہیں نا ان کی ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے یہ. اور میں ابھی میں نے ریجنل ایونٹ میں حصہ لیا اور اس میں میری فرسٹ پوزیشن آئی.
اچھا, اور اس کے علاوہ کوئی غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی آپ نے حصہ لیا؟
جی بالکل, میں نے اسکول کی ٹینس ٹیم میں حصہ لیا پہلے تو, اور اس میں میں نمبر ون پلیئر تھا ٹیم کا. تو ہم لوگ تقریباً اسٹیٹ کمپٹیشن تک پہنچنے لگے تھے, لیکن میں جس بندے نے اسٹیٹ کمپٹیشن جیتا میں اس سے سیمی فائنل ہار گیا تھا.
اچھا,
تو وہ بڑا اچھا گیا. باقی میں کمیونٹی سروس میں کافی میں کر رہا ہوں, تقریباً میرے 100 گھنٹے ہونے والے ہیں کمیونٹی سروس کے لیے. دوسرا میں لوگوں سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں, یعنی جو گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں یا پھر دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو, یعنی اپنے ملک کے بارے میں بتانے کے لیے تاکہ ان کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دیا جائے جو کہ وہ سوچتے ہیں ہمارے بارے میں اور جو کہ ہم اصل میں ہیں.
اچھا, اور آپ نے ایک تو سارے آپ نے ایک گریڈز لیے, ٹینس آپ کھیل رہے ہیں, 80 گھنٹے سے زیادہ والنٹیئر ورک کر چکے ہیں؟
جی جی, 80 گھنٹے سے زیادہ کر چکا ہوں.
اور 40 جو آپ نے پریزنٹیشنز دیے ہیں اور 2000 لوگوں تک آپ نے پاکستان کے بارے میں اس کے بارے میں معلومات پہنچائی.
ہاں جی, یہ انٹرنیشنل ایجوکیشن ویک ہوتا ہے, اس میں زیادہ تر ایکسچینج اسٹوڈینٹس جو ہے نا وہ اپنے ملک کے بارے میں پریزنٹیشن دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو وہ بتا سکیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہے. تو ہمارا جو ملک ہے پاکستان, اس کے بارے میں کئی جگہوں پہ یعنی کافی زیادہ مسکنسپشنز ہوتی ہیں کہ ہمارا ملک میں کچھ نہیں ہے, یعنی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن میں نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ نہیں, ہمارا ملک بڑا خوبصورت ملک ہے اور یہ جو مسکنسپشنز ہوتی ہیں اس کے بیانڈ بہت زیادہ کچھ ہے, بہت پیارا ملک ہے ہمارا. تو میں نے تقریباً 40 پریزنٹیشنز دی اپنے اسکول میں بھی اور دوسرے اسکولز میں اور گورنمنٹ آفیشلز کو. تو اس میں جو میری ایک ہائی لائٹ رہی وہ یہ تھی کہ میں نے ایک پورے مڈل اسکول کو پریزنٹیشن دی, اس میں تقریباً 500-600 لوگ تھے, تو اور ان میں بچے تھے, اور ان بچوں کو جب میں نے پریزنٹیشن کے بعد کہا کہ آپ مجھ سے سوال پوچھیں تو ان بچوں نے مجھ سے تقریباً 30-40 سوال پوچھ لیے, اور ایک گھنٹے کی جو پریزنٹیشن تھی وہ 2.5 گھنٹے تک چلی گئی تھی.
واو, اور وہ 600 بچے تھے جہاں جن کو آپ نے پاکستان کے بارے میں معلومات پہنچائیں. تو کیا ان بچوں کے کیا سمجھتے تھے وہ پاکستان کو, پاکستان کیسا ملک ہے اور وہاں کیا ہوتا ہے؟
بچوں کے مسکنسپشن اصل میں بڑے جو ہے نا وہ بھولے ٹائپ ہوتے ہیں, یعنی ان کے سوال اس طرح کے ہوتے ہیں. جس طرح ایک بچے نے مجھ سے پہلی بار سوال پوچھا جو میں نے کبھی بھی نہیں سنا کسی سے بھی نہیں, اس نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستان میں ہاتھی پھرتے ہیں ہر جگہ. میں نے کہا اونٹوں کا تو سنا تھا لیکن ہاتھی کا پہلی بار سوال آیا میرے سامنے.
اچھا, تو پھر ان کا تاثر ٹھیک کیا کہ بھائی ہاتھی ہوتے تو ہیں لیکن اس طرح یعنی سڑکوں پر نہیں پھرتے.
بالکل, میں نے یہ کہا کہ میں نے ہاتھی دیکھے پاکستان میں لیکن زو میں ہی دیکھے, زو کے علاوہ کبھی نہیں دیکھے.
اچھا اچھا, پھر آپ نے بتایا تھا پروگرام سے پہلے کہ پبلک اسپیکر بن گئے اور اپنے کلچر کے جو دوسرے رنگوں کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کلچرل ڈانس بھی دکھائے اور انہیں سکھائے بھی یہاں کے لوگوں کو.
جی بالکل, یہی پریزنٹیشن کے دوران ہی میں نے جو ہے اپنا پنجابی گانے لگائے, شکر منڈا لگایا اور لڈی کے گانے لگائے اور ساروں کو ڈانس کروایا, بڑا مزہ آیا اس میں. اور वो लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, जब आप अपने कल्चर के बारे में समझाते हो ना, तो वो बजाय इसके कि वो इंटरेस्ट ना शो करें, वो पूरे इंटरेस्ट से सुनते हैं, और ये आपको भी एक मोटिवेट करता है कि लोग सुन रहे हैं तो फिर आप भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह मुझे यानी मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैंने अपने अंदर की एक बात ऑब्जर्व की कि मुझे बोलने का शौक है लोगों के सामने ना, और जब कोई सुन रहा हो तो फिर मुझे मजा आता है बात करने में, और उस तरह मैं करता जाता हूँ।
अच्छा, तो लेकिन यानी आपने अपना जो कल्चर था उसका जो एक दिलचस्प पहलू था वो लुड्डी और ये जो फोक डांस हैं उनके जरिए आपने पाकिस्तान को मुतारिफ कराया और वो उनको बहुत पसंद आया। अच्छा, खाने भी आपने आपने भी मुतारिफ कराए यहाँ के, खासतौर पर लाहौर में जो जो गढ़ है अच्छे खानों का, तो कुछ बताइए कि क्या आपने आपने भी खाने पकाने सीखे और लोगों को खिलाए?
जी, जब आप असल में लाहौर से आते हैं ना अमेरिका, तो खाने एकदम से बिल्कुल हो जाते हैं ब्लैंड, यानी बिल्कुल ठीक के हो जाते हैं, क्योंकि लाहौर के खाने और फिर अमेरिका के खाने, ये बड़ा मुझे मसला हुआ शुरू में। मैंने बड़ी कोशिश की खाने बनाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे अंदर मोहित की तरह शेफ का स्किल नहीं है, तो मेरे खाने इतने अच्छे नहीं बने, लेकिन फिर भी मैंने बड़े मजे से खाए, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने खुद बनाए पहली बार, क्योंकि पहले तो जिस तरह मुहित ने कहा कि अम्मी पे डिपेंड करता सब कुछ, कि वो बना दें वही खिला दें सब कुछ, तो हम खा लेंगे। इधर आके जब खुद बनाते हो तो वो एक अकॉम्प्लिशमेंट फील होती है कि आपने खुद बनाई ये चीज।
अच्छा, तो लेकिन ये अब आपने शुरू में आपको यहाँ के खाने फीके लगते थे और अब आपको अपने पाकिस्तानी खानों में मिर्चें ज्यादा फील होने लगी है?
जी, जब मैंने लास्ट टाइम पाकिस्तानी खाना खाया तो मुझे थोड़ी सी मिर्चें लगनी शुरू हो गई, मैंने कहा अब तो जब पाकिस्तान वापस जाऊंगा तो अमरीकी खाना खाना पड़ेगा वहां जाके।
तो आपसे हम ये भी पूछेंगे कि और यहाँ की क्या क्या चीजें पाकिस्तान वापस लेकर जाएंगे, यहाँ की क्या अच्छी चीजें वहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेकिन ये बता दीजिए कि कब कब ये ख्याल आया यहाँ मिशिगन में रहते हुए कि लाहौर लाहौर है,
लाहौर लाहौर है। पहली बार तो यही खाने की बारी में आया, दूसरी बार लोगों का होना, यानी लोगों का मिलना जुलना, यानी यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है, आप लोगों से मिलते हो लेकिन वो यानी ये है कि टेम्परेरी बात की और फिर यानी अगली बार आप पता नहीं कब मिलते हो, लेकिन लाहौर में ये है कि लोग इतने मिलने जुलने वाले हैं, आप एक दफा किसी से मिलते हो ना तो वो आप तो यानी अगले 6 महीने आपसे मिलता ही रहेगा जब मर्जी आप मिलना चाहो।
अच्छा, अच्छा।
ये एक बात है कि लाहौर लाहौर है अपने मामले में, और लाहौर में यानी आप कहीं भी चले जाओ ना तो आपको कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा, कोई ना कोई मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे ये है कि इतना कुछ नहीं है, नहीं है, मेरा जो टाउन है वो काफी छोटा है, तो इसमें घूमने फिरने की इतनी जगह नहीं है, लेकिन वैसे लोग अच्छे हैं, लोग काफी अच्छे हैं और मेरे दोस्त काफी बन गए हैं, और बड़ा मजे की जगह है।
तो भाई बेहद शुक्रिया आपका सायरम खान, आपसे गुफ्तगू हम थोड़ी देर के बाद दोबारा करेंगे। और अब एक बार फिर दुरे नायाब हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं, तो दुरे नायाब सवाल तो आपने सुन लिया था, आप जवाब दीजिए दोबारा से, क्योंकि मैं अब सवाल दोहराऊंगी तो हमारा टाइम ज़ाया होगा, बोलिए।
तो मैं जहाँ भी थी तो स्टूडेंट जिंदगी पूरी बदल देते हैं, वो इतनी ग्रोथ होती है और वो वापस आते हैं तो उनका एक बिल्कुल नया माइंडसेट होता है, दे वांट टू ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी। तो कहा कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज सो अमेजिंग एंड सो ग्रेट। मैंने अप्लाई किया, स्ट्रगल सही पढ़ी, बहुत ज्यादा टॉक्स वगैरह पास करी थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब रही और अब यहाँ पे आने हुई थी। आई एडजस्टेड रियली वेल यहाँ के, मतलब मैंने कल्चर को एस्टिमेट किया हुआ है और उनको अपने कल्चर का बता रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा
है। अच्छा, और आपने बताया कि आप यहाँ पर वॉलीबॉल खेलती हैं, जिम क्लास में जाती हैं और प्रेजेंटेशंस भी आपने बहुत दिए, तो क्या प्रेजेंटेशंस का रिजल्ट क्या आया जो आपने पाकिस्तान के बारे में लोगों को बताया? दुरे नायाब आप कोई और नंबर दे सकती हैं टेलीफोन का, क्योंकि हम माजरत खाएं कि इस आवाज़ में तो हमें समझ में नहीं आ रही तो सुनने वालों को कैसे समझ में आएगी। तो आप अपना फ़ोन बंद कर दीजिए, अभी बंद ना कीजिए, हमारे प्रोड्यूसर से बात कीजिए तो वो आपको बताएंगे कि आपको अब क्या करना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले आफाक अली भी मौजूद हैं, वेस्टर्न न्यूयॉर्क में टेलीफोन पर हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफाक अली।
वालेकुम सलाम।
बेहद शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। बताइए हमारे सुनने वालों को कि गिलगित बल्तिस्तान के एक पसमानदा इलाके से न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में रहना कैसा लगा और कैसे एडजस्ट किया खुद को?
جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے اس پروگرام پہ.
آپ ہیں اس قابل بھائی, آپ سب اس قابل ہیں. آپ سب لوگ, ہم آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے اتنے ہزاروں اسٹوڈنٹس میں سے مقابلہ جیت کر یہاں تک پہنچنے کا اعزاز حاصل کیا. اور نہ صرف یہاں پر آئے بلکہ یہاں پر آ کر بھی ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیے تھے, اور ایسے ایسے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں جو یہاں کے لوگ بھی نہیں کر سکتے. تو بتائیے کہ آپ نے اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کا کہاں کہاں مظاہرہ کیا.
جی بہت بہت شکریہ پہلے تو. اور گلگت بلتستان جہاں کا کلچر ایک بہت واسٹ کلچر ہے, اور نیو یارک جیسا بڑا شہر, آپ یہاں آ کے سب سے پہلے تو آپ دنیا ہی پوری چینج ہے یہاں کی. آپ یہاں پہ آتے ہو, آپ دیکھتے ہو پوری آپ نے کبھی زندگی میں اتنا بڑا شہر نہیں دیکھا. حالانکہ کراچی ہے بہت بڑا اور گلگت بھی بہت بڑا ہے, لیکن نیو یارک تو بہت زیادہ, ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. اور جب میں یہاں آیا تو شروع میں جیسا کہ سائرم اور مجھ دونوں نے بتایا کہ کھانوں کا پرابلم تھا, تو کھانے ذرا شروع میں مشکلات آئی تھی کھانوں کے اس پہ, لیکن بعد میں جیسے میری ہوسٹ فیملی بہت اچھی تھی, میری ہوسٹ مام بہت اچھی تھی, اور نیو یارک یہاں پہ بہت ڈائیورس ہے, تو یہاں پہ پاکستانی ریسٹورینٹس بھی ہیں اور بہت سارے حلال اسٹورس بھی ہیں جہاں سے مجھے کھانا ملا. اور شروع میں بہت پرابلم ہوئی تھی کہ کچھ کھا نہیں سکتا تھا, لیکن اب ایسا ہے کہ اب ایڈجسٹ ہو گیا ہوں. اب امریکی کھانے کھاتا ہوں میں یہاں پہ, میری ہوسٹ فیملی وہ ہے اٹلی کی ہیں, تو میں ان کے کھانے بھی ٹرائی کرتا ہوں.
اچھا, اٹلی کے کھانے بھی پسند آ رہے ہیں آپ کو؟
جی جی جی, اٹلی کے بہت 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 لذیذ کھانے ہوتے ہیں یہاں کے, کچھ کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں.
اچھا, تو تعلیمی ریکارڈ کیسا ہے آپ کا؟
جی جیسا کہ مجید نے بتایا کہ انہیں بیسٹ اسٹوڈنٹ ملا تھا. مجھے یہاں پہ انرولمنٹ ہوئی تھی میری, کہ میری یو ایس ایس ٹی اور میری اسپینش کلاس میں میری ہائیسٹ گریڈز آئے تھے, جس وجہ سے مجھے اپنی کلاس کے میری اسپینش کلاس اور مجھے یو ایس ایس ٹی کلاس میں سامنے بلایا تھا اور مجھے اوارڈ دیا تھا کہ آپ کے بیسٹ گریڈز ہیں پورے فرسٹ ٹرم کے اندر. تو یہ بہت بڑی وہ تھی کہ آپ پاکستان سے امریکہ آتے ہیں جہاں پہ آپ کی, یہاں کے لوگ انگلش بہت اچھی بولتے ہیں. ہم کراچی میں, ہم گلگت میں رہ کے اتنی اچھی بول نہیں سکتے تھے, لیکن پھر بھی ہم نے یہاں آ کے بہت محنت کری شروع میں, اور پھر بیسٹ اسٹوڈنٹ کا اوارڈ ملا تھا یو ایس ہسٹری اور اسپینش کلاس کے اندر.
واہ واہ, اور آپ نے ویلنٹائنز ڈے پر چرچ میں پریزنٹیشن دی تھی, اور کچھ یہ بتائیے کہ ایک تو ایک مسلمان بچے کا چرچ میں جانا کیسا لگا, اور کس طرح عبادت کا جو کانسیپٹ ہے پاکستان میں مسلمانوں میں, وہ آپ نے کیسے اس میں تبدیلی محسوس کی, اور کس طرح آپ نے پریزنٹیشن دی اور اس کا کیا ریئیکشن کیا تھا؟
جب مجھے پتا چلا میری ہوسٹ موم جو ہے وہ خود ایک ویٹرن ہے, تو وہ انہیں خود انوائٹ کیا تھا چرچ کے اندر, تو ہم سب گئے تھے چرچ, اور وہاں پہ میری ہوسٹ موم نے سب کے سامنے کہا کہ یہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہے فرام پاکستان اور یہ اپنے کنٹری پہ پریزنٹ کرنا چاہتا ہے. تو میں نے سب ویٹرنز کے سامنے پریزنٹیشن دی, اور بہت ہی ایک بڑی چیز تھی کہ آپ امریکن آرمی کے سامنے, بڑے آفیشلس کے سامنے آپ نے پریزنٹیشن دی, اور بہت ہی اچھا لگا اس وقت. اور جب میں فرسٹ ٹائم چرچ گیا تو میرا تو ایک ڈفرینٹ مائنڈ تھا کہ چرچ کس طرح ہوتا ہے, میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا. گیا تو میں نے دیکھا کہ بہت بہت ڈفرینٹ ہے. ہم مسلمان اور کرسچنس کے اندر سملیرٹیز بھی بہت ہیں اور ڈفرینسز بھی بہت ہیں, اور فرسٹ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا تھا یہاں کے. یہاں پہ چھوٹے بچوں کے لیے الگ ان کے اسٹڈیز ہوتی ہیں, پھر جو سینئر سٹیزنس جو ہوتے ہیں ان کے لیے الگ ہوتا ہے, تو بہت اچھا ہوتا ہے. اور یہاں کی نیو ٹیکنالوجیز جو یہ لوگ یوز کرتے ہیں, اس وجہ سے ان کے چرچ بہت اچھے ہوتے ہیں. میں جب پہلی دفعہ گیا تھا تو مجھے شروع میں بہت ہوا تھا کہ میں کیا کروں گا, کچھ کرنے کو نہیں ہوگا, کچھ مجھے آتا نہیں ہے, لیکن جب میں گیا, میں اپنی ہوسٹ فیملی کے ساتھ بیٹھا تو مجھے بہت مزہ آیا.
تو اور آپ نے یعنی پاکستان کے بارے میں جو ان کا تصور تھا اس کو تبدیل کرنے میں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں آپ کامیاب رہے؟
میں نے اسکولز میں پریزنٹیشنز دی, میں نے جب وہاں ویٹرنز ڈے پہ پریزنٹیشن دی, تو یہ تھا کہ بہت سے آرمی آفیشلس تھے جو مڈل ایسٹ کے اندر رہ چکے تھے, اور سب سے پہلا ان کا پرسپیکٹو یہ تھا کہ پاکستان مڈل ایسٹ کے اندر آتا ہے, جو سب سے پہلے میں نے چینج کیا کہ پاکستان جغرافیکلی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ہے اور یہ مڈل ایسٹ کا پارٹ نہیں ہے, اور اس کے بعد کہ پاکستان میں بہت اچھی جگہ ہے, اور حالانکہ گلگت بلتستان جو کہ بہت امن ہے, وہاں پہ پاکستان امن کا کنٹری ہے. اور ڈیورنگ پریزنٹیشنز بہت سے ایسے سوال آئے تھے جن میں انہوں نے ان کو پتا نہیں تھا ان کے بارے میں, جو میں نے بتایا کہ کوئی بھی کنٹری ہو یا کوئی بھی ریلیجن ہو, کوئی ٹیررزم سپورٹ نہیں کرتا, اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی جن پہ انہوں نے سب نے کھڑے ہو کے مجھے तालियां तालियां बजाई थी कि इतने छोटे से बच्चे ने आज हमारा पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया।
वाह, तो आपने एक तरह से पाकिस्तान की एक सफीर होने का हक अदा किया और पाकिस्तान के बारे में जो उसका दुरुस्त तासुर है वो पेश करने की कोशिश की, और उसमें आप समझते हैं कि आप कामयाब भी रहे। और आपने बताया था कि आपने पनाह गुजीनों के जो बच्चे हैं वो आपके स्कूल में थे, तो उनके लिए भी आपने पाकिस्तान के का तासुर दुरुस्त करने की कोशिश की कि पाकिस्तान किस तरह पनाह गुजीनों को का ख्याल रखता है और कितने अच्छे उसके हुकूमती अखलाक हैं कि वो बुनियादी अखलाकियात पर अमल करता है।
जी, मेरे स्कूल में बहुत से रेफ्यूजीज हैं इराक के और सीरिया के, तो मैं स्कूल गया था तो शुरू में तो ये लोग समझ रहे थे कि मैं भी इन्हीं इसी का हिस्सा हूँ, कि ये लोग मुझे बहुत से बैड कमेंट्स पास करते थे। लेकिन बाद में जब मैंने प्रेजेंटेशन दी और मैंने बताया कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है, पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है, पाकिस्तान ने हमेशा रेफ्यूजीज को पनाह दी है और पाकिस्तान कभी टेररिज्म सपोर्ट नहीं करता और कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जो टेररिज्म सपोर्ट करता है, तो मुझे मैं बड़ा खुश हुआ था जब मैंने उन सबका माइंडसेट चेंज किया कि पाकिस्तान हमेशा रेफ्यूजीज के साथ था और हमेशा रहेगा।
और आपने क्योंकि आपके बहुत अच्छे ग्रेड थे तो आपने आपको एक ट्रिप का मौका मिला है कॉलेज का, और वहाँ आपने क्या फिर पेश किया, कोई ऐसी कोई दिलचस्प बात जो वहाँ आपको हासिल हुई हो या जिसका तजर्बा आपको हुआ?
जी, मैं स्कूल की तरफ से जब अच्छे जिन बच्चों के अच्छे ग्रेड थे उन्हें कॉलेज ट्रिप पे ले गए थे, जो कि यहाँ की वेस्टर्न न्यूयॉर्क में बहुत लाइक बहुत बड़ी कॉलेज है, उसका नाम है यूबी, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो। तो मैं वहाँ गया और मैंने जब वहाँ पे क्लासेस देखी तो एक डिफरेंट माइंडसेट था। मैंने देखा कि लोग यहाँ के लोग इतने एडवांस है और इतनी अच्छी लाइक इनकी स्टडीज, जिस तरह लोग स्टडीज करते हैं, हर क्लास के लिए डिफरेंट रूम्स हैं, डिफरेंट उनके प्रोफेसर्स हैं, हर बंदा आके पढ़ता है और इनके ग्रेड्स पूरे डिफरेंट होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं इनके पास। तो एक बहुत अच्छा माइंडसेट हुआ कि देखा कि लोग कितना अच्छा अच्छे तरीके से यहाँ की टेक्नोलॉजीज का किस तरह ये लोग इस्तेमाल करते हैं।
तो ये चीजें आपको बहुत अच्छी लगी, तो बेहद शुक्रिया आफाक अली, आपने बड़ी तफसील से बताया अपने बारे में भी और यहाँ के कल्चर के बारे में भी और यहाँ जो कुछ आपने सीखा। आपसे हमारी गुफ्तगू भी जारी रहेगी, लेकिन अब दुर्रे नायाब से अब एक बार फिर कोशिश करते हैं कि उनका टेलीफोन सही हुआ जहाँ वो मौजूद हैं, तो देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल है। जी दुर्रे नायाब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
चलिए, मेरा ख्याल है कि अब बेहतर हैं हालात, तो बताइए क्या अब आपके इस सिग्नल वाले मामले से क्या समझूं, कि क्या आप टेक्नोलॉजी के किसी गढ़ में रह रही हैं या किसी देहात में रह रही हैं जहां सिग्नल इस तरह आ रहे हैं?
ओहायो एक तरह से एक देहात का ही एरिया है जहाँ पे मैं आई, तो मुझे मैं बहुत ज्यादा वो सरप्राइज हो गई। मैंने आई न्यू कि स्काईस्क्रेपर्स वगैरह तो नहीं होंगे पर ये बिल्कुल चुताल जैसा ही है, इट्स मच बेटर, पर हर जगह ग्रीनरी है, फार्म एरिया है, तो काफी डिफरेंट है।
अच्छा, तो बताइए कि फिर आपसे हमने एक सवाल किया था कि किस तरह आपने अपने आप को एडजस्ट किया एक अजनबी घराने में, अजनबी माहौल में, अजनबी सकाफती माहौल में, अजनबी यानी देश में, एक अजनबी घराने में?
मैंने ये की कि लाइक फॉर एवरी प्रॉब्लम द बेस्ट ये कि आप कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करो। तो मैंने कोई भी खुदा ना खासा मसला होता था तो मैं हमेशा जो है अपने पेरेंट्स से बात करती थी, इनसे कम्युनिकेट करती थी, और इस तरह मैंने लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किया। आई स्टेप्ड आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, मैं खुद जाके बात करती थी, तो इस तरह जो है उन्होंने मेरे बारे में मतलब दे लर्न्ड अबाउट मी, मैंने उनके बारे में सीखा और इस तरह मेरे मसले दूर हो गए।
तो आपने बताया था प्रोग्राम से पहले कि आपने बहुत सारी प्रेजेंटेशंस दी और होस्ट घराने में भी दी, और लेकिन इसके साथ साथ आपने यहाँ से क्या कुछ सीखा?
यहाँ मैंने ये सीखा कि लोगों की नॉलेज लिमिटेड है बट दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट लर्निंग, ये बहुत ज्यादा सीखना चाहते हैं हर चीज के बारे में। जैसे ये होस्ट फैमिलीज पूरी मतलब अक्रॉस द कॉन्टिनेंट ये स्टूडेंट्स को होस्ट करते हैं, उनके बारे में सीखना चाहते हैं, तो इट्स रियली लाइक नाइस ऑफ देम, रियली ग्रेट। तो इस तरह मैंने इनको अपने कल्चर के बारे में बताया, दे वर हंग्री टू नो अबाउट माई कल्चर। मैंने इस तरह इनको जो है इनको सेटिस्फाई किया, आई टोल्ड देम पाकिस्तान कैसी जगह है, व्हाट इज पाकिस्तान इन रियलिटी, और इस तरह जो है मैंने इनको बताया, इनके बारे में सीखा. एंड आई लर्न कि अमेरिकन कल्चर में लोग बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं और अपने अपनी कौम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत यूनाइटेड हैं और दे फाइट फॉर व्हाट दे बिलीव इन. इस तरह मैंने अमेरिकन के बारे में सीखा.
और आप, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बहुत कम लड़कियों को मस्जिद में जाने का मौका मिलता है, तो आपको भी पाकिस्तान में मस्जिद में जाने का मौका तो नहीं मिला होगा, या अगर मिला हो तो कम कम मिला होगा. लेकिन आप जिस घराने में रह रही हैं उसके साथ आप चर्च भी जाती हैं, तो ये तजर्बा कैसा लग रहा है? इबादत का ये तस्वीर जिसे करीब से देखने का मौका मिला, इससे आपकी जिंदगी पर या आपकी सोच में कोई तब्दीली आ रही है?
जी, मैंने ये देखा कि हमारे रिलीजन के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों हैं. और इट्स मच मोर सिमिलर देन वी एक्सपेक्ट. और चर्च में जब मैं गई, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. इट वाज रियली डिफरेंट, बट मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने इंजॉय किया. मतलब ये लोग जिस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, गिटार, ड्रम्स, सिंगिंग सब कुछ करते हैं, इनकी इबादत जो जैसे हमारी नाते हैं इस तरह ये लोग गाते होते हैं, और कुछ लोग दे लूज देमसेल्फ, थोड़ा सा झूम रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं, तो इस तरह. और फिर इनके सर्विसेज वगैरह में भी ये एक कॉमन सा कोई टॉपिक लेते हैं और उसके बारे में अपनी, जैसे बाइबल है, बाइबल से ये लोग वर्सेस लेके उस टॉपिक के बारे में और भी ज्यादा डिस्कस करते हैं. तो दे काइंड ऑफ यूजिंग रिलीजन टू बैक अप द स्टफ दैट हैपेंस इन नॉर्मल ह्यूमन लाइफ. सो इट वाज अ रियली ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस.
तो दुरन नयाब, आपसे हमारी गुफ्तगू भी जारी रहेगी, लेकिन हमारी प्रोड्यूसर सादिया असद कह रही हैं कि बड़ी देर हो गई है, एक ब्रेक का वक्त हो गया, तो एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे और करेंगे, फिर हम बाकी मेहमानों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारे आज के मेहमान हैं अमरीकी महकमा खारजा के जेर एहतमाम कैनेडी लूगर यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम के तहत यहाँ अमरीकी हाई स्कूलों में एक तालीमी साल गुजारने का मौका हासिल करने वाले 105 तलबा और तालिबात के एक ग्रुप के कुछ नुमाइंदा तालिब इल्म. हमारे मेहमान हैं कोहाट पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले यूसुफ रजा कुरैशी, जो विस्कॉन्सिन के एक हाई स्कूल में एक तालीमी साल मुकम्मल कर रहे हैं. लाहौर पाकिस्तान के सायरम खान, जिन्हें मिशिगन के एक हाई स्कूल में एक तालीमी साल गुजारने का मौका मिला है. हमारी मेहमान हैं कराची पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली कैलिफोर्निया के एक हाई स्कूल में एक साल के लिए जेर तालीम कशफ मुजीब. इस्लामाबाद की दुरे नायाब, जो ओहायो के एक हाई स्कूल में एक तालीमी साल मुकम्मल कर रही है. हमारे मेहमान हैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले आफाक अली, जो वेस्टर्न न्यूयॉर्क के एक हाई स्कूल में एक साल के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं. और पिशावर पाकिस्तान के मुईदुल हसन भी आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं, जो मिशिगन के एक हाई स्कूल में एक साल के लिए जेर तालीम हैं. हमारे मेहमानों के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर हमारे मेहमानों की तस्वीर के संग संग सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/voaurdu और facebook.com/hardamrawahaizindagi और facebook.com/yasminjameelvoaurdu. हमारे सभी मेहमान मौजूद हैं अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों से टेलीफोन पर हमारे साथ. जी चित्राल की दुरे नयाब, आपसे एक आखिरी सवाल कि क्या दिलचस्प हालात पेश आए अपने घर में जब आपने पिज़्ज़े को टोमेटो केचप के साथ खाया, तो और जब आपको 5 पालतू कुत्तों के साथ घर में रहना पड़ा? तो
घर में जब मैं इस्लामाबाद में थी तो मेरे पेट्स नहीं थे. मुझे एनिमल्स बहुत अच्छे लगते थे पर पेट्स कभी नहीं रखे थे. तो यहाँ पे एकदम से 5 कुत्तों को जब मैंने वो करना पड़ा, आई हैड टू गेट यूज्ड टू देम. तो इट वाज प्रीटी क्रेजी इन द बिगिनिंग. मतलब आप जहाँ भी जाओ आपके पीछे आते हैं, सोफे पे बैठो तो गोद में आके बैठ जाते हैं या करीब आके लेट जाते हैं. तो मैं स्टार्ट में काफी मुझे अजीब सा लगता था, बट देन अभी जो है मैं जब इनके साथ क्लोज हो गई हूँ, जब मैंने कुत्तों को प्यार से ट्रीट किया तो अम्मी अब्बू को भी अच्छा लगा कि मैं like it's like their family jo inke pets hain. to unko lagta hai ki I'm trying to be a part of the family. aur pizza ka ye hua ki pakistan mein to I think sab pizza ke sath ketchup khate hain, par yahan pe jab maine khaya to ajeeb sa mujhe dekh ke the tum kya keh rahi ho. maine kaha ketchup kha rahi hu pizza ke sath, to they're like there's already so much sauce, to ye kya ajeeb harkat hai. to is tarah hua tha. acha. aur जब मैंने इनके लिए खीर बनाने की कोशिश की तो मैंने काफी मेहनत की थी, पर सैडली मेरा इतना अच्छा नहीं बना. तो ये लोग बस कोशिश कर रहे थे दिखाने की दे लाइक इट, बट आई न्यू आई डिडंट डू दैट.
अच्छा, तो फिर आपने जान करके तो नहीं खीर जला दी थी तो ताकि आपसे आइंदा कोई पकवाए ही ना?
नहीं, इस तरह नहीं किया था, पर दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन, मतलब दैट वुड बी अ नाइस आइडिया. करना चाहिए,
करना चाहिए था, लेकिन वो खुद ही अल्लाह की तरफ से हो गया. तो अल्लाह की तरफ से बहुत से काम अभी और भी होने बाकी हैं और आपको अल्लाह मियां ने यहाँ तक पहुँचा दिया, और इंशाल्लाह आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर आप वापस जाएंगी तो वहाँ पर पाकिस्तान में भी बहुत कुछ करेंगी अपने घर वालों के लिए, अपने इर्द के लोगों के लिए. तो बेहद शुक्रिया दुरे नायाब, आपसे हम एक सवाल अभी बहुत बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम गुफ्तगू में शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम के मेहमान यूसुफ रजा कुरैशी को. बड़ी देर के बाद इनसे रब्ता हुआ है, पता नहीं ये कहाँ थे कि टेलीफोन वहाँ सिग्नल नहीं जा रहा था. अस्सलाम वालेकुम यूसुफ रजा कुरैशी.
अस्सलाम वालेकुम.
कहाँ थे इतनी देर से हमारा फोन आप नहीं उठा रहे थे?
सिग्नल्स का मसला है, लगता है अमेरिका भी इतना एडवांस नहीं है.
अच्छा, तो उन्हें बताना था कि हमारे जो कोहार्ट में तो बड़े अच्छे सिग्नल है और हम जहाँ होते हैं हमारा फोन जो है वो रिसीव भी होता है और उस पर बात भी होती है. तो आपसे हमने अब ये अपने सुनने वालों को हम ये बताएंगे कि मुईदुल हसन की तरह आपने भी कुछ ऐसे काम किए हैं जो कभी नहीं किए थे. आपने फोटोग्राफी सीखी, तरखानी सीखी यानी वुडवर्क, कुकिंग सीखी और सिर्फ 5 दिन की प्रैक्टिस के बाद पहलवान बन गए. हालांकि आप कहीं से पहलवान नजर नहीं आते, लेकिन पहलवानी के मुकाबलों में हिस्सा लिया और मुकाबलों में खूब पिटते रहे, लेकिन पिट पिट कर भी जीत गए. बताइए क्या क्या कहानी है ये सब?
जसामत से तो नाम है, फुटबॉल अमेरिकन फुटबॉलर लगता हूँ, नहीं रेसलर लगता हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद बस यस टू एवरीथिंग एटीट्यूड से बस हर चीज में कूदता रहा. तरखानी भी सीखी, फोटोग्राफी भी सीखी और 5 दिन की प्रैक्टिस के बाद पहलवान भी बन गया. तो इस तरह काफी सारे इन एक्सपीरियंस के साथ साथ और भी काफी सारे नए एक्सपीरियंसेस किए, लेकिन तरखानी से लेके रेसलिंग तक अमेरिका ने सब कुछ सिखा दिया, तो ये एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए.
अच्छा, और मजाक ही मजाक में आप स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल के सदर भी बन गए, हालांकि आपको वहाँ कोई एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जानता था जो आपको नॉमिनेट तक कर सकता, लेकिन आपने एक अजनबी तालिब इल्म से दरखास्त की और उसने आपको नॉमिनेट कर दिया. तो क्या कहानी थी ये भी हमारे सुनने वालों को बताइए.
बिल्कुल, इसी तरह बिल्कुल नया नया मैं स्कूल गया तो मुझे कोई भी नहीं जानता था, मेरे साथ सिर्फ जो डेस्क शेयर कर रहा था उस लड़के को मैंने कहा कि मुझे भी नॉमिनेट कर दो, मुझे भी ट्राई करना है. तो हर एक चीज ट्राई करते करते बस वो भी ट्राई कर दिया. उसके बाद उन्होंने हमें बुलाया कि आप आए और बोलें कुछ, क्यों आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं. तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था, बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था. फिर हवास बागता हो गया, चला गया, काफी कुछ बोला. मैंने कहा कि यार ये हम करते रहे हैं और मुझे मैनेजमेंट आती है, मैं कर सकता हूँ. और मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं नया एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ, तो आई नो हाउ टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स. और ये वो तो फिर बाहर भेज दिया. कोई अंदाजा नहीं था कि क्या होगा, उम्मीद भी नहीं थी कि बन जाएंगे. जब वापस आया तो चारों तरफ रोशन हो गए, कहते हैं कि आप प्रेसिडेंट हैं.
अच्छा,
तो वो मेरे लिए बड़ा
माशाल्लाह. और फिर आप एक छोटे से शहर में रहते हैं ना, लेकिन आपने प्रेजेंटेशंस दी चर्च में जाकर और साबका फौजियों को भी दी, खासतौर पर जो वेटरन्स डे पर आपने ये प्रेजेंटेशन दी, तो वो एक अचीवमेंट थी आपके नजदीक. तो बताइए कि वो क्या आपने प्रेजेंटेशन दी और साबका फौजियों को क्या बताया आपने कि पाकिस्तान में क्या सिस्टम है और क्या क्या उनके बारे में गलत तासुरात यहाँ पर मौजूद हैं?
मेरे नज़दीक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी मेरी ये प्रेजेंटेशन और ये वेटरन्स डे इवेंट होस्ट करना था. हमारे स्कूल में वेटरन्स डे इवेंट हो रहा था तो वो मैंने होस्ट किया. उसमें जाके मैंने वेटरन्स को, ऑल्दो प्रोग्राम उनके बारे में था लेकिन मैंने पाकिस्तान के बारे में उनको प्रेजेंट किया. तकरीबन 450 to 500 लोग मेरे स्कूल के और वेटरन्स सब कुछ मिला के लोग थे. उनको मैंने हालांकि होस्ट मैंने वेटरन्स डे करना था लेकिन मैंने उनको पाकिस्तान के बारे में बताया, अपनी आर्मी के बारे में, और उनको काफी कुछ बताया कि जितने आप लोग पेट्रियोटिक हैं उतना मैं भी हूँ अपने मुल्क के बारे में, तो उतना मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद उनको मैंने उनके डे के मुताबिक उनको रिस्पेक्ट दी. तो उसके बाद काफी वेटरन से मिला तो उनने कहा कि ऐसा लगता नहीं है कि तुम दूसरे मुल्क से हो, क्योंकि जो सेंटिमेंट्स तुम्हारे अल्फाज में थे वो बिल्कुल अमेरिकन सेंटिमेंट्स थे. तो अच्छा लगा कि मतलब वो लोग इतना एक्सेप्ट कर रहे थे मुझे.
और आपने पाकिस्तान का कौमी तराना स्टेज पर गाया भी, सुनाया भी और सिखाया भी, वो कैसे?
प्रेजेंटेशन के दौरान और प्रेजेंटेशन के बाद में काफी क्लासेस में मैंने जाके उनको बताया कि मैं अमेरिका आया हूँ एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट, लेकिन हर सुबह मैं आप लोगों के झंडे को एलिजेंस प्लेज करता हूँ, तो एज एन अमेरिकन मैं आप लोगों के साथ खड़ा होकर करता हूँ. जब जब मेरा मेरा तराना बजता है तो आप लोग भी करें. तो कुछ क्लासों में जाके मैंने उनको तराना सिखाया भी, कुछ उनके साथ गाया भी, तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मतलब
और आप जहाँ कहीं जाते हैं आप पाकिस्तान का परचम अपने साथ रखते हैं?
जी बिल्कुल, परचम बस अब क्या करें, बस जेब में जहाँ जाते हैं साथ जाते हैं.
अच्छा, हेयर कटिंग के लिए जाते हैं तो उस नाई को बताते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ये पाकिस्तान का परचम है, तो इस तरह आप चलते फिरते पाकिस्तान यहाँ पर बने हुए. हाँ
बिल्कुल, बस छोटा सा एक एम्बेसडर हूँ और ये इस प्रोग्राम की रूह भी है, तो जहाँ जाता हूँ उनको बताता हूँ कि यार ये हमारे मुल्क में इस तरह होता है, तो उनके लिए भी काफी, उनकी छोटी छोटी बातें काफी नई होती हैं और इस तरह इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है.
तो अपने आप को एक अच्छे पाकिस्तानी मॉडल के तौर पर आप पेश कर रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर लोगों को बताएं कि पाकिस्तान का जो असल तस्वीर है वो क्या है, और जो मीडिया में लोगों को सुनने और देखने को मिल रहा है वो उससे ज़रा मुख्तलिफ है, काफ़ी मुख्तलिफ है जो कि पाकिस्तान असल में है. अच्छा, और तो बहुत कुछ आपने सीखा, बस म्यूजिक नहीं सीखा?
म्यूजिक भी सीखा है जी, कॉयर में कॉयर लेसन लेते रहे. तो यहाँ पर एक स्टूडेंट जो है हम पाकिस्तान में, और ये चीज हमें भी प्रमोट करनी चाहिए वहाँ पे कि एज एन अमेरिकन स्टूडेंट यहाँ पे आप सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं सीखते, यहाँ पे आपको वो जिंदगी के तमाम एस्पेक्ट से थोड़ा थोड़ा टच रखते हैं ताकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो आप एक ऑलराउंडर हो, आपको सिर्फ किताबों का ना पता हो. तो यहाँ पर आके जैसे आपने कहा तरखानी से लेके पहलवानी और म्यूजिक वगैरह सब कुछ मैंने सीखा है, तो इन सेंस म्यूजिक भी मैंने काफी सीखा है.
तो बेहद शुक्रिया यूसुफ रजा कुरैशी, आपसे अभी गुफ्तगु को ख़त्म करते हैं और हम अब शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम की आज की अगली मेहमान कशफ मुजीब को, जो कैलिफोर्निया से हमारे साथ हैं. उनको हमने अपने साथ इसलिए लिया कि यहाँ वर्जीनिया और कैलिफोर्निया के टाइम डिफरेंस में यानी तीन घंटों का फ़र्क है, तो उनके यहाँ अभी सुबह हुई थी तो हमने उनको थोड़ी देर से लिया. कशफ मुजीब, अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
आपका शुक्रिया, आपने सुबह सुबह उठकर हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. और बताइए हमारे सुनने वालों को कि यहाँ आने पर किसने तहरीक दी, और हरदम रवा है जिंदगी के यूथ एक्सचेंज स्टूडेंट्स के इस प्रोग्राम में आपने यहाँ आने से पहले इंटरव्यू के दौरान आप बता रही थी कि आपने पाकिस्तान में सुना था, तो ऐसा जो आपने वो प्रोग्राम सुना था अपने उस वेटिंग रूम में, उसमें ऐसा क्या नहीं था जो आज के प्रोग्राम में आपने सुना?
तो ये हुआ ये कि हर संडे के संडे जो था वो हमारे एक तो घर में भी जो है टीवी चैनल पे आता था ये प्रोग्राम वॉइस ऑफ अमेरिका, तो जो मैंने एक दफा देखा था कि कुछ लोग एलुमनाइज वगैरह थे हमारे जो वहाँ पे इंटरव्यू हमारे इतना दे रहे थे, तो उसके बाद फिर हम जब इंटरव्यू में एक्चुअली मैं गई यस के इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे भी उन्होंने जब हम वेट कर रहे थे अपने इंटरव्यू देने के लिए तो वहाँ पे भी उन्होंने चलाया हुआ था, तो मैंने देखा कि लोग बता रहे थे कि हमारे अंदर ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह डेवलप हुई, हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया, ये हुआ वो हुआ. तो देख के मुझे बहुत मोटिवेशन आई मेरे अंदर कि मुझे भी अप्लाई करना है, मुझे भी जाना है इसके लिए. तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया, माशाल्लाह से मेरा हो गया, तो आज मैं अमेरिका में बैठी हूँ. इसके अलावा मैंने इसमें प्रोग्राम तो खैर वो ये था कि उसमें भी यही कुछ बातें हो रही थी कि लीडरशिप स्किल्स आई, हमारे अंदर कल्चर कैसे प्रमोट किया, यहाँ पे भी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फन हो रहा है जो अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि हम कैसे आपके साथ पिज्जा खाया और ये हुआ.
तो आपके लेकिन कराची के बाद कैलिफोर्निया में रहना आपको कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगा होगा, क्योंकि कराची भी पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी के साथ साथ हर लिहाज से एक बड़ा शहर है और कैलिफोर्निया भी टेक्नोलॉजी का गढ़ है, तो क्या टेक्नोलॉजी के गढ़ में क्या आप ऐसे तजर्बात हासिल कर चुकी हैं जो दूसरी अमरीकी रियासतों में रहने वाले यूथ एक्सचेंज स्टूडेंट्स को नहीं हासिल हुई?
बिल्कुल, ये मैं कहना कराची की तो अपनी बात है, लेकिन कैलिफोर्निया भी कोई कम नहीं है, दोनों मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं. तो मेरी यहाँ पे मेरे साथ ये रहा है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे आके, तो मैंने यहाँ पे अपने खुद की कुछ चीजें शुरू की और बहुत कुछ सीखा, तो मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉलंटियरिंग की. उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं अपना खुद का एक प्रोग्राम शुरू किया जिससे मैंने लोगों के लिए स्वेटर वगैरह जमा किए, मतलब होमलेस लोगों के लिए, वो बहुत ज्यादा सक्सेस रहा, तो उनको मैंने ले जाके वो चीजें दी और बहुत खुश हुए. तो मैंने मतलब हर जो हमारे जो मेरे साथ जो और लोग आए हैं हर किसी ने कुछ ना कुछ अचीव किया है, तो मैंने भी कुछ अचीव किया लेकिन उनसे थोड़ा कुछ डिफरेंट मैंने अचीव किया है. उनको मेरा स्टूडेंट ऑफ द मंथ मुझे मिला अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसके बाद मैं इंटरनेशनल एजुकेशन वीक में जो था वो मेरा क्या कहते हैं मुझे मैं वो कॉन्टेस्ट विनर रही हूँ उसमें. तो हर किसी ने कुछ ना कुछ जीता है, जैसे बहुत से लोगों को बहुत कुछ मिला, इस तरह मुझे भी कुछ ना कुछ मिला यहाँ पे आके.
आपने ये जो है नर्सिंग होम्स में आपने शिरकत की, वॉलंटियर किया, रेस्क्यू मिशन में आप खाना तकसीम करती हैं, तो कुछ बताइए कि कैसे ये शौक पैदा हुआ कि दूसरों के लिए वॉलंटियर वर्क करें, और आपने यूनिसेफ के लिए भी फंड रेजिंग आप कर रही हैं.
जी, तो हुआ ये कि हमारे स्कूल में जो था वो क्लब ज्वाइन करने की ना बारी आई, तो मैंने देखा कि वो यूनिसेफ एक क्लब था जो इंटरनेशनली वर्क करता है अफ्रीका वगैरह ऐसी कंट्रीज यानी कॉन्टिनेंट्स में जहाँ पे जो है इतनी फैसिलिटीज नहीं होती. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे ज्वाइन करूँ और फिर कुछ लोगों की मदद हो जाए इस तरीके से. तो मैंने वो ज्वाइन किया, तो फिर मैंने उससे जो है उस क्लब से उसके क्लब के जरिए मैंने फंड रेजिंग की उन बच्चों के लिए जो अफ्रीका में जो होते हैं जो पैदा होते ही बीमार हो जाते हैं या उनके कुछ बीमारी लग जाती है, उनके लिए मैंने फंडरेजिंग की. अच्छे खासे मेरे पास यानी डॉलर्स मैंने पैसे जमा किए उनके लिए, बहुत मजे का एक्सपीरियंस था. उसके बाद फिर एक दफा ये हुआ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हमें वो रेस्क्यू मिशन लेके गई, उन्होंने कहा आप ट्राई करके देखें कि आपको कैसा लगता है यहाँ पे होमलेस लोगों को खाना देना और ये सब. फिर मैंने वहाँ पे, मैं जब पहली बार गई तो मुझे बहुत मजा आया. मैंने कहा चलो बार बार मैं हर महीने में दो दफा तो जरूर जाती हूँ वहाँ पे जाके लोगों को होमलेस लोगों को मैं खाना सर्व करती हूँ, तो उसमें बहुत मजा आता है मुझे.
और आपने स्काउटिंग में भी हिस्सा लिया, आपने कल्चरल डांस भी लोगों को मुतारिफ कराए पाकिस्तान के, और वहाँ के खुद से वहाँ के झंडे और वहाँ के छोटे छोटे फ्लैग्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए, तो जिससे आपने पाकिस्तान को यहाँ मुतारिफ कराया. ठीक
जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. तो हुआ ये कि हमारा इंटरनेशनल एजुकेशन वीक था, तो गर्ल्स स्काउट की जो थी हमारे पास पूरी टीम थी, तो फिर मैं वहाँ पे मैं गई, मैंने वहाँ पे प्रेजेंटेशन वगैरह दी उनको. फिर एक जो गाना आजकल बड़ा मशहूर है शक्कर वंडा, उस पर मैंने उनको साथ डांस वांस किया, उन्हें बड़ा मजा आया वो उस गाने पे डांस करने में. उसके बाद फिर मैंने उनको नेशनल एंथम अपना सुनाया, और फिर छोटे जो जिन बच्चों ने सही सही जवाब दिए, फिर मैंने छोटी छोटी पिंस दी पाकिस्तान से जो मैं लेके आई थी झंडे वाली, और बहुत छोटे छोटे गिफ्ट लेके आई थी वो मैंने उन्हें दिए, ताकि उन्हें कुछ तो याद रहे कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या था, कौन सी कंट्री है, कहाँ है.
तो आपने यहाँ पर आकर जो कुछ आप कर सकती थी पाकिस्तान के तासुर को बेहतर बनाने के लिए, पाकिस्तान के बारे में मालूमात पहुंचाने के लिए वो कर रही हैं. अब हमारे सुनने वालों को, जो इस वक्त हमारे फेसबुक पर भी बहुत सारे, हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने तमाम फेसबुक के लिसनर्स का जो इस वक्त हमारे फेसबुक पेजेस पर हमारे मेहमानों की तस्वीर के साथ साथ हमारा प्रोग्राम सुन भी रहे हैं. मैं उनको जवाब में लिख भी रही हूँ, लेकिन उन सब के नाम लेना इस वक्त मेरे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन सभी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारा प्रोग्राम फेसबुक पर भी सुन रहे हैं. हमारे जो दूसरे सुनने वाले हैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में, उन्हें बताइए कि अगर वो इस प्रोग्राम में आना चाहें तो किस तरीके से अप्लाई करें, मुख्तसरन बताइए, और इसका लिंक बता दीजिए जहां जाकर वो इस बारे में मालूमात हासिल करें यूथ एक्सचेंज स्टूडेंट के बारे में.
दो तरीके, एक तो ये कि आप अपने स्कूल में, एक तो स्कूल में इसका आता है तो स्कूल की टीचर्स जो आपको बताती हैं, अगर आपके स्कूल में ये ना आए प्रोग्राम के बारे में कोई आपको अवेयरनेस ना दी जाए, तो फिर एक वेबसाइट है आपको मैं वेबसाइट बता देती हूँ, https.yespk.org. इस पे आप जाएं और जाके आप देखें तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन मिल जाएगी. आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और अगर आप अप्रूव हो जाते हैं तो वो फिर वो यस वाले आपको खुद ही कांटेक्ट करते हैं उसके बाद.
तो ये तरीका है जिस तरीके से ये तमाम जो पांच छह स्टूडेंट्स आज हमने इनवाइट किए हैं, और ये छह स्टूडेंट्स उन 105 स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो इस मरतबा इस तालीमी साल में यहाँ अमरीका में मौजूद हैं. तो हम उन तमाम स्टूडेंट्स को जो 105 स्टूडेंट्स हैं आप को मुबारकबाद भी देते हैं, और उनको ये बताते हैं कि ये छह जो स्टूडेंट्स हैं ये आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और आप सब में से जिसको भी हमें मौका मिलेगा आइंदा भी हम प्रोग्राम्स में शामिल करते रहेंगे. अब प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म होने को है. हम चाहेंगे कि हमारे जो तालिबिल जो यूथ एक्सचेंज स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ हैं उनसे एक एक सवाल आखिर में ज़रूर कर लें. मुईदुल हसन, आप हमारे साथ मौजूद हैं?
जी
जी, बताइए कि आप पाकिस्तान वापस जाकर अब क्या किस तरह बदले हुए मुईदुल हसन होंगे?
जी पाकिस्तान में ये था कि लाइक कॉन्फिडेंट तो था मैं, लेकिन इतनी कोई पब्लिक स्पीकिंग स्किल नहीं थी जैसे सायर में, एक नेचुरल पब्लिक स्पीकर नहीं था मैं. वो यहाँ पे आके जो मैंने प्रेजेंटेशन वगैरह दिए, अराउंड 30 प्रेजेंटेशन दिए और डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट ऑडियंसिस के सामने, तो वो एक आइडिया हो गया, एक पब्लिक स्पीकिंग का एक माइंड बन गया. तो वापस जाके मेरा ये है कि मैं एक बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर बन के जाऊंगा, और इधर लीडरशिप की क्लासेस मैंने जो ली थी तो एक इफेक्टिव लीडर बन के जाऊंगा और लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा. और ये है कि यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान का स्टीरियोटाइप तोड़ा है, वहां पे जाके अमेरिका का स्टीरियोटाइप तोड़ूंगा और पाकिस्तान अमेरिका फ्रेंडशिप बताऊंगा उनको.
बताएंगे, बहुत शुक्रिया. दुरे नायाब, आप पाकिस्तान वापस जाकर क्या करेंगी और क्या नया करेंगी जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए फायदेमंद होगा?
जी, मैं जहाँ चित्रास से आई हूँ तो लोगों के पास टैलेंट बहुत ज्यादा है. सारे जो स्टूडेंट्स हैं और लोग हैं, इंडिविजुअल्स, बहुत टैलेंटेड है, बहुत उनके अंदर पोटेंशियल है, पर ये सैडली उनको जो है चांसेस कुछ भी नहीं मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं है. तो जब मैं जाऊँ तो मैंने इस तरह कुछ करना है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बनाऊँ, उनको बताऊँ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स की इम्पोर्टेंस का, किस तरह आप जाके जो स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करते हैं और फिर जब आप वापस आते हैं तो आप अपने नेशन को बताते हैं कि अमेरिकन कल्चर इज मच मोर देन व्हाट यू थॉट इट वाज. इस तरह मैं यूनिटी प्रमोट करूंगी और जो है जाके अवेयरनेस क्रिएट करूंगी बहुत ज्यादा.
बहुत शुक्रिया दुरे नायाब. और सायरम खान, आप लाहौर की क्या बातें यहाँ के लोगों को सिखा चुके हैं और यहाँ की क्या ऐसी अच्छी बातें जिन्हें आप अपने साथ लेकर वापस पाकिस्तान जाएंगे?
जी, लोगों को तो मैं लाहौर का ये सिखाती हूँ कि हम लोग बड़े खुले दिल के लोग, जैसे जो खाना पीना और जो मजी मेहमान नवाजी, ये सब कुछ हमारा बड़ा मशहूर है. और ये इस बात का मैंने बड़ा कुछ इनको बताया
जी, लेकिन अब आप बता नहीं पा रहे क्योंकि आपके टेलीफोन का सिग्नल खत्म हो चुका है. आफाक अली, अब कितना बदला हुआ आफाक वापस पाकिस्तान जाएगा और क्या अच्छी चीज है इस कल्चर की, इस मुल्क के अपने साथ रखना चाहेगा?
मैं जब पाकिस्तान वापसी जाऊंगा तो मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं यहाँ पे जो मैंने प्रेजेंटेशंस दी उस वजह से, जैसे मोहित ने बताया कि मुझ में भी लीडरशिप स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी, तो पाकिस्तान जाके मैं काफी अच्छा लीडर, लाइक लीडरशिप स्किल्स आ गई है मुझ में और पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो गई है. और गिलगित में भी बहुत लोगों में बहुत पोटेंशियल है वहाँ, लेकिन जैसा कि नायाब ने बताया कि वहाँ लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो मैं जाऊँगा वापसी गिलगित और लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताऊंगा इस एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में कि अप्लाई करें और किस तरह आप पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में आप जो डिफरेंसेस है वो आप देख सकते हैं.
यूसुफ रजा कुरैशी, कुछ यहाँ की जो होस्ट फैमिलीज हैं उनके लिए आप इस वक्त कुछ कहिए जो आप जैसे स्टूडेंट्स को यहाँ पर रखती हैं, अपने घर के दरवाजे खोलती हैं, उन्हें फैसिलिटेट करती हैं कि वो अपना पूरा तालीमी साल मुकम्मल कर सकें, उनको खिराज तहसीन किस तरह पेश करेंगे आप इस वक्त?
अपनी होस्ट फैमिली की अगर बात करूँ तो इनको होस्ट भी मैंने कहना छोड़ दिया काफी टाइम पहले, क्योंकि जिस तरह अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं उसी तरह मुझे भी ट्रीट करते हैं. तो सबसे ज्यादा जो चीज़ मुझे याद आएगी अमेरिका से वो शायद इस एक्सपीरियंस से भी ज्यादा यही लोग होंगे, क्योंकि अपनी फैमिली को भी पीछे छोड़ना कोई आसान नहीं था. जिस तरह अपनी फैमिली को पाकिस्तान में छोड़ के आया था उसी तरह इनको छोड़ के जाना
बहुत मुश्किल होगा. बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया यूसुफ रजा कुरैशी. आज के प्रोग्राम को समेटने का वक्त हुआ और हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान कौन थे और अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारे आज के मेहमान थे अमरीकी महकमे खारजा के जेर एहतमाम कैनेडी लूगर यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम के तहत यहाँ अमरीकी हाई स्कूलों में एक तालीमी साल गुजारने का मौका हासिल करने वाले 105 तलबा और तालिबात के एक ग्रुप के कुछ नुमाइंदा तालिबे इल्म 15 से 17 साल की उम्रों के ये तालिबे इल्म अपने मेजबान अमरीकी घरानों के साथ उनके घर के फर्द की तरह रहते हुए अमरीकी सकाफत का बराह रास्त मुशाहिदा कर रहे हैं और यहाँ अमरीका में अपनी पाकिस्तानी सकाफत को भी मुतारिफ करा रहे हैं. हमारे मेहमान थे कोहाट पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले यूसुफ रजा कुरैशी जो विस्कॉन्सिन के एक हाई स्कूल में एक तालीमी साल मुकम्मल कर रहे हैं, लाहौर पाकिस्तान के सायरम खान जिन्हें मिशिगन के एक हाई स्कूल में एक तालीमी साल गुजारने का मौका मिला है. हमारी मेहमान थी कराची पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली कैलिफोर्निया के एक हाई स्कूल में एक साल के लिए जेरे तालीम कशफ मुजीब, इस्लामाबाद की दुरे नायाब जो ओहायो के एक हाई स्कूल में एक तालीमी साल मुकम्मल कर रही हैं. हमारे मेहमान थे गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले आफाक अली जो वेस्टर्न न्यूयॉर्क के एक हाई स्कूल में एक साल के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं और पिशावर पाकिस्तान के मुईदुल हसन भी आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं जो मिशिगन के एक हाई स्कूल में एक साल के लिए जेर तालीम हैं. हमारे मेहमानों के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर हमारे मेहमानों की तस्वीर के संग संग सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/voaurdu اور facebook.com/hardamrawahainzindagi اور facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. ہمارے مہمان موجود تھے امریکہ کے مختلف ریاستوں سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. اس پروگرام کی پروڈیوسر تھی سعدیہ اسد, اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے سنگ سنگ آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کر رہی تھی پردہ خلیل. یاسین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی کرتے ہیں.